रविवार का दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। चक्रवाती तूफान इरमा अमेरिका पहुंचा, दक्षिणी फ्लोरिडा में लगभग 4 लाख लोग अंधेरे में।
Perhaps up to 120 or 130 miles an hour. These kinds of winds can do tremendous damage.
भारत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कथित फर्जी बाबाओं की सूची जारी की।
ये धर्म की ठेकेदार संस्था नहीं है, लेकिन अब इस समय अखाड़ा परिषद के नाम पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है।
और संग संग गुनगुनाओगे में आज बात कल्याण जी आनंद जी की। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। चक्रवाती तूफान इरमा अमेरिका पहुंच गया है। फ्लोरिडा के दक्षिणी द्वीपों पर तेज हवाओं का दौर जारी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के एक अधिकारी ने कहा है कि हालात बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को कहा है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी रुक गई है। हरिकेन से होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए फ्लोरिडा में 60 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा मायामी समेत कुछ अन्य कस्बों में भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। भारत में राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। रविवार को स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस द्वारा परिजनों पर लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। हत्या से पहले बच्चे के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई थी। इस बात के सामने आने के बाद से ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन गुस्से में हैं। रविवार को हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि माँ बाप की तसल्ली के लिए किसी भी एजेंसी से जांच करवाई जाएगी। दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि उनका देश अपने यहाँ अमरीकी परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार नहीं कर रहा। एजेंसी ने राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता के हवाले से जानकारी दी है कि सियोल पहले की तरह चाहता है कि कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियार पूरी तरह हटाए जाएं। इस बीच नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलनबर्ग ने कहा है कि उत्तर कोरिया से चल रहे गतिरोध की तुलना 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यूबा मिसाइल संकट में शीत युद्ध के दौरान दो बड़ी सेनाओं के बीच गतिरोध बना था।
We are in a very different situation back during the Cuba missile crisis.
हालात बहुत अलग हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान दो बड़ी सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ था। उस वक्त शीत युद्ध भी चल रहा था, मगर आज हमारे सामने एक छोटा सा मगर लापरवाह और खतरनाक देश है जो पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले हथियार विकसित कर रहा है। मगर हम इस देश पर ऐसे कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। ये थे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलनबर्ग के शब्द। इंटरनेशनल रेडक्रॉस ने रोहिंग्या मुसलमान लड़ाकों द्वारा संघर्ष विराम के ऐलान का स्वागत किया है। अभी तक बर्मा की सेना की तरफ से इस संघर्ष विराम को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 2 हफ्ते पहले रोहिंग्या लड़ाकों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद म्यांमार की सेना ने कड़ी कार्रवाई शुरू की थी। तब से लेकर अब तक करीब 3 लाख रोहिंग्या पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। रोहिंग्या लड़ाकों द्वारा संघर्ष विराम को बड़ा कदम बताते हुए इंटरनेशनल रेडक्रॉस के जॉय सिंघल ने उम्मीद जताई कि इससे रखाइन राज्य में मदद पहुंचाने में आसानी होगी। ये एक सकारात्मक पहल है। प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की बहुत जरूरत है। हमें उम्मीद है कि इस संघर्ष विराम से हमारे स्टाफ और वॉलंटियर्स के लिए मदद पहुंचाना पहले के मुकाबले आसान और सुरक्षित हो जाएगा। ये थे रेडक्रॉस के जॉय सिंघल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की राजधानी काहिरा में 7 चरमपंथियों के मारे जाने की खबर है। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इनमें से एक चरमपंथी ने पुलिस पर कोई विस्फोटक चीज फेंक दी थी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और हमलावर की मौत हो गई। 6 अन्य चरमपंथियों की मौत गोलीबारी में हुई। 2013 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सुरक्षा बलों द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही इस्लामिक लड़ाके लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बीते 3-4 दिन से एक शब्द लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वो शब्द है इरमा। इरमा एक चक्रवाती तूफान का नाम है जो लगातार आगे बढ़ रहा है और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। बीते एक दशक में ये सबसे शक्तिशाली अटलांटिक तूफान है जो कैरिबियाई द्वीपों में कम से कम 25 लोगों की जान ले चुका है। इरमा की वजह से हवा की गति अभी तक अधिकतम 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है। इरमा ने बारबुडा द्वीप को रहने लायक नहीं छोड़ा और सेंट मार्टिन द्वीप को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। डोमिनिक रिपब्लिक, हैती, क्यूबा और बहामास के बाद अब बारी है अमरीका की, जहां इरमा ने अब से कुछ घंटे पहले फ्लोरिडा में दस्तक दी है। नेशनल वेदर सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी चिप कैस्पर ने बीबीसी को बताया,
We have hurricane force wind gusts throughout the Florida Keys right now, and those winds are going to increase as the core.
पूरे फ्लोरिडा में इस समय तूफानी हवाएं चल रही हैं जिनकी रफ्तार हर पल बढ़ती जा रही है। एक घंटे के भीतर हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवा जबरदस्त तबाही लाती है, घर, छत, पेड़, बिजली की लाइन वगैरह सब तबाह कर देती है। ये थे नेशनल वेदर सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्द। फ्लोरिडा के मायामी में थोड़ी ही देर में सुबह के 10:15 बजने वाले हैं और यहाँ लगभग 4 लाख लोग इस समय बिना बिजली के गुजर बसर कर रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है और पूरा दिन बाकी है। हालात यही रहे तो मायामी के लोगों को आज की रात अंधेरे में बितानी होगी। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आया जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि पहले हार्वी और अब इरमा, ये तूफान एक के बाद एक क्यों आ रहे हैं और चक्रवाती तूफान बनने की वजह आखिर है क्या? यही जानने के लिए मैंने लंदन में मौजूद बीबीसी के पर्यावरण मामलों के संवाददाता नवीन खड़का से अब से कुछ देर पहले बात की।
देखिए, वैज्ञानिकों को अभी तक ये पता नहीं है कि इस तरह की चक्रवर्ती जो तूफान है वो क्यों शुरू होते हैं। इसकी जो साइंटिफिक जो कारण है ये पिन पॉइंट अब तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना ये जरूर जानते हैं कि इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। एक तो जो समुद्र की पानी जो है वो गर्म होनी चाहिए, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ जिस जगह पर ये गर्म पानी है उसके इर्द गिर्द कुछ हवा चलनी चाहिए, तब जाकर इस तरह की तूफानी जो चक्रवर्ती तूफान है ये शुरू होता है। तो इरमा के हक में भी यही माना जा रहा है।
नवीन, ये बताइए कि इरमा के कुछ ही दिन पहले हार्वी तूफान भी आया था, वो भी चक्रवाती तूफान था। उससे पहले भी तमाम इस तरह के चक्रवाती तूफान आते रहे हैं और इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के तूफान आते रहेंगे। ये तूफान लगातार एक के बाद एक क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कोई खास वजह है?
देखिए, ये जो आपने कहा इससे पहले जो आया हार्वे, अभी भी जो है, अब जब हम आप और मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी जो है होसे एक और तूफान है, हालांकि अभी तक वो इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो इसके कारण जो है एक प्रश्न उठ रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण से ये हो रहा है क्या? तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि समुद्री तूफान, चक्रवर्ती तूफान जो है वो हमेशा होता रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो है और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण जो है समुद्र का पानी वो गर्म होता जा रहा है। इसकी वजह से इवन हमारे यहाँ भी जो मॉनसून की जो बातें हैं वहां भी यही बात होती है कि जो समुद्र के पानी जो वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, इसके कारण से इस तरह के तूफान जो है वो और शक्तिशाली बनते हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो बार बार आना, ये भी बढ़ता है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को अध्ययन करता है, UN बॉडी है ये, तो इसका एक भविष्यवाणी ये भी है कि इस तरह की जो तूफान है ये आगे के दिन में और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का पानी और गर्म होता जाएगा।
नवीन, चलते चलते आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, वो ये कि ये जो अभी जो तूफान है इरमा, ये और कितने दिन तक अपना असर दिखा सकता है? अभी फ्लोरिडा में है इस समय, क्या ये फ्लोरिडा जाकर शांत हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, या आगे और तबाही मचा सकता है? अभी
देखिए, जो अभी कैटेगरी 4 में जो बता रहे हैं अभी, ये मतलब ये जितना शक्तिशाली है, अब ऐसा मानना है कि एक बार जब वो जमीन में आ गया तो उसके बाद अक्सर जो है वो कमजोर बनता जाता है, अक्सर ये होता है। लेकिन अभी भी ये भी आपको पता होगा कि इरमा के हक में इसमें जो दिशा बताया गया था उससे थोड़ा सा इसने चेंज किया है, तो इसलिए इस तरह की जो है डिस्टर्बेंसेस जो है इसकी एक एग्जैक्ट प्रोजेक्शन जो है भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर जो है एक बार जमीन में आ जाए वो जो जो तूफान है, जो पानी लाता है, जो वायु लाता है, उसकी जो गति होती है, उसकी जो शक्ति होती है वो धीमा बनता जाता है। ये इसी वजह से अक्सर ये होता है, इसीलिए इरमा के हक में भी यही सोचा जा रहा है, लेकिन ये अभी देखने वाली बात तो यही है कि इसकी डैमेज, इसकी जो नुकसानी कितना होगा और अब ये कितना चलेगा।
ये थे बीबीसी के पर्यावरण मामलों के संवाददाता नवीन खड़का।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब रुख कर रहे हैं भारत का कथित आध्यात्मिक गुरुओं के लगातार विवाद में आने के बाद आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश के 14 कथित फर्जी बाबाओं की सूची जारी की है। इलाहाबाद में हुई परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में ये सूची जारी की गई। हालांकि इस सूची के जारी करने और अखाड़ा परिषद के अधिकार को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष खुद भी कई विवादों में रहे हैं। सुनिए समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
देश भर के 13 अखाड़ों के संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं यानी आध्यात्मिक गुरुओं की सूची जारी की और लोगों को इनसे सावधान रहने की अपील की। परिषद की सूची में जेल में बंद आसाराम बापू और राम रहीम के अलावा निर्मल बाबा भी शामिल हैं। सूची जारी करने के बाद परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने मीडिया से बात की।
आज जो है उन बाबाओं की लिस्ट जारी कर रहा हूं जो फर्जी है, पाखंडी है और जिनको बाबा या महात्मा के नाम से संबोधन मत करिएगा और गृहस्थी है आप, और उसका समर्थन सभी अखाड़ों ने किया है। सरकार से मांग करते हैं कि उनकी संपत्ति जांच कराई जाए, उनकी जांच कराई जाए, कुछ तो जल्द चले गए। बाबा रामपाल जेल में, आसाराम जेल में, गुरमीत सिंह जेल में, इनकी भी कार्रवाई करके इनको जेल में डाला जाए।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की कार्यकारिणी में सभी अखाड़ों से दो दो प्रतिनिधि हैं और महंत नरेंद्र गिरि के मुताबिक सभी 26 प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से ये सूची जारी की है। सूची में राधे माँ और नारायण साईं भी शामिल हैं। महंत नरेंद्र गिरि ने बताया कि अभी और बाबाओं की पहचान करके कुछ और सूचियां भी जारी की जाएंगी। अखाड़ा परिषद ने जिन बाबाओं की सूची जारी की है उनमें से किसी का भी संबंध किसी अखाड़े से नहीं है, इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अखाड़ा परिषद ने किस हैसियत से ये सूची जारी की है। सूची में इलाहाबाद के एक संत आचार्य कुश मुनि का भी नाम है। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं,
अखाड़ा परिषद नाम रजिस्टर्ड संस्था है, 1954 में कुंभ में हुए भगदड़ के बाद गठित की गई थी। स्थान की व्यवस्था को देखेगी, अखाड़ों की व्यवस्था देखेगी, ये धर्म की ठेकेदार संस्था नहीं है, लेकिन अब इस समय अखाड़ा परिषद के नाम पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। अखाड़ा परिषद जो है अपने 13 अखाड़ों के संतों के बारे में नहीं ले सकता है, जो लोग अखाड़े के सदस्य नहीं है उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता अखाड़ा परिषद। हम तो किसी अखाड़े में है ही नहीं, मैं तो दंडी सन्यासी परंपरा में हूँ।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खुद अखाड़ा परिषद और उसके मौजूदा अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि भी कई बार विवादों में रहे हैं। पिछले दिनों वो तब चर्चा में आए जब एक शराब व्यवसायी को उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी थी। बकौल कुश मुनि,
ये वही नरेंद्र गिरि है जिसने सचिन दत्ता नाम के व्यक्ति को 80 लाख रूपए लेकर के महामंडलेश्वर बना दिया था।
आज की सूची में सचिन दत्ता का भी नाम है। अखाड़ों से जुड़े साधु संत मुगल काल से ही अर्धकुंभ और कुंभ में इकट्ठा होकर हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प लेते रहे हैं। आज भी कुंभ और अर्धकुंभ में ये लोगों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू जारी रहा। घटना में एक युवक की मौत के बाद तनाव बना हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है, वहीं मृतक के परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया है। जयपुर के बड़े हिस्से में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
बात इतनी सी थी कि बात कुछ भी ना थी, लेकिन देखते देखते शुक्रवार की रात जयपुर के रामगंज क्षेत्र में पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवा में गोलियां चलाई। इस घटना में एक युवक आदिल की मौत हो गई। आदिल का शव तब से अस्पताल में है और उसके घर पर चीखो पुकार मची हुई है। यह घटना शुक्रवार की रात तब हुई जब सड़क पर अतिक्रमण हटाने और यातायात दुरुस्त करने को लेकर भीड़ और पुलिस में भिड़ंत हो गई। मृतक आदिल के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है और शव लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने रविवार को परिजनों से दो दौर में बातचीत भी की, लेकिन अब भी गतिरोध बना हुआ है। पुलिस अधिकारी समीर दुबे ने मीडिया से कहा, हालात नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है।
कर्फ्यू लगातार जारी है। दिनांक 11 की रात्रि 4 AM तक वापस से कर्फ्यू लगाया गया, एक दिन एक्सटेंड किया गया, शांति व्यवस्था बनी रहे इस कारण से। अभी सुबह से लेकर के रात्रि में भी बिल्कुल परम शांति रही, सुबह भी शांति है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी आवश्यक सेवाएं हैं दूध इत्यादि की, उनकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा कोऑर्डिनेट करके, कानून व्यवस्था ठीक है।
इस घटना से शहर के गुलाबी नगर के हिस्से में कर्फ्यू लगाना पड़ा है और गतिविधियां ठप हो गई है। कोई इंटरनेट बंद होने से परेशान है तो कोई व्यापार के ठहराव से दुखी है। मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया है। राज्य में एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस पर कुछ प्रेक्षक इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाल रहे हैं। यकायक हुई इस घटना से लोग हैरान और परेशान है। बात महज इतनी सी थी कि यातायात पटरी पर आ जाए, लेकिन इससे एक जिंदगी की सांसें हमेशा के लिए पटरी से उतर गई। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
कार्यक्रम में आगे खेल समाचार होंगे, लेकिन पहले साप्ताहिक कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे यतीन्द्र मिश्र के साथ। आज होगी बात संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
पिछली शताब्दी में 70 के दशक में कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने उसी तरह फिल्म संगीत की दुनिया में लोकप्रियता और सफलता अर्जित करनी शुरू की थी, जिस तरह 40 के दशक में होसलाल भगत राम और 50 के दशक में शंकर जयकिशन की जोड़ियों ने पाई थी। गुजरात के कच्छ के गांव कुंदरोड़ी से आए हुए संगीतकार भाइयों कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह के बीच जीवन भर पारिवारिक रिश्ते से ज्यादा कला के रिश्ते महत्वपूर्ण और मुखर बने रहे। इनके पिता वीर जी शाह जब गुजरात से बम्बई आकर बसे, उस दौरान सिनेमा की दुनिया में मराठी और गुजराती संस्कृति से प्रभावित संगीत का दौर जारी था। 80 के दशक की शुरुआत तक आते आते कल्याण जी आनंद जी भाइयों की जोड़ी सफलता के शिखर का प्रतीक बन चुकी थी।
परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना।
ये सफलता इसलिए भी कल्याण जी आनंद जी के संगीत पटल को बड़ा बनाती है, क्योंकि उन्होंने लोकप्रिय धुनों को रचने में लगभग कीर्तिमान ही बनाया है। उनके मधुर संगीत वाली फिल्मों में हम मदारी, छलिया, सरस्वती चंद्र, हिमालय की गोद में, दूल्हा दुल्हन, जब जब फूल खिले, हसीना मान जाएगी, उपकार, पूरब और पश्चिम, जॉनी मेरा नाम, महल, सफर, कोरा कागज, होली आई रे, गीत, ब्लैकमेल, जंजीर, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और कुर्बानी को याद कर सकते हैं। इसी समय उनकी बेहद सफल गीतों की चंद झलकियाँ भी सुनी जा सकती हैं।
वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
कुछ दिनों तक शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा में शामिल रहे कल्याण जी ने स्वयं का भी एक ऑर्केस्ट्रा समूह बनाया था। शंकर जयकिशन की तरह ही दोनों भाई अलग अलग अपनी धुनें तैयार करके इसी फिल्म का संगीत रचते थे। इसमें जहां कल्याण जी गंभीर और अर्धशास्त्रीय गीतों को बनाने में सफल रहे, वहीं आनंद जी के हिस्से चुलबुले और हल्के मूड के रुमानी गीतों को तर्ज पर बांधने का काम आता रहा। ऐसे गीतों को भी इन दोनों की जोड़ियों के संदर्भ में सुनना दिलचस्प होगा।
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही।
छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।
कल्याण जी आनंद जी ने दर्द भरे गीतों के सृजन में भी कमाल की सहजता हासिल की है। उनकी इस तरह की धुनों में कर्णप्रियता तो बरकरार है ही, बड़े सारगर्भित तरीके से हिंदी फिल्मों की परंपरा में इनकी सिग्नेचर धुनों को देखा जा सकता है, जो लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार के अलावा नई आवाजों में भी संभव हुई। ऐसे गीतों की वानगी को इस लिहाज से भी सुनना चाहिए कि वे उस सफल संगीतकार जोड़ी की धुनों की तरह फिल्म संगीत के इतिहास में कहीं मौजूद हैं, जिनका कोई दूसरा विकल्प जल्दी दिखाई नहीं देता। कुछ दर्द भरे गीतों की नुमाइंदगी इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं।
वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
ये जानना कल्याण जी आनंद जी के हुनर के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपनी ज्यादातर कंपोजिशंस को तीन रागों के इस्तेमाल से समृद्ध बनाया था। इनमें भैरवी, पीलू, चारुकेशी जैसे रागों को याद किया जाना चाहिए। ये इस जोड़ी की खास विशेषता रही। हालांकि ये भी देखना प्रासंगिक है कि इन रागों की स्वर संगति को आधार बनाकर रचे गए ढेरों गीतों में किसी एक राग की शुद्ध ढंग से व्याप्ति नहीं दिखती, बल्कि तमाम सारे रागों की अर्थ छायाओं से एक गीत मुकम्मल होता है और अपनी नैसर्गिक सुंदरता में आगे बढ़ता है। उन रागों के स्वभाव को ही देखते हुए कुछ कोमल और शुद्ध स्वरों को अत्यंत कुशलता से कल्याण जी आनंद जी ने अपनी धुनों में स्थान दिया। एक दो गीत हम इस तरह का सुन सकते हैं। ये संगीतकार जोड़ी प्रेम गीतों को रचने में भी शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह ही सफल, लोकप्रिय और सदाबहार रही। प्रेम और रोमान के सैकड़ों गीतों से कल्याण जी आनंद जी ने वो सफलता अर्जित की है जो 70 और 80 के दशक के युगल गीतों का एक बड़ा मजबूत पक्ष माना जाता है। धुनों की कर्णप्रियता और ऑर्केस्ट्रेशन की सुघर बनावट के साथ जो संगीत का अत्यंत मस्ती भरा, उत्सव धर्मी और प्रेम की उन्मुक्त दशा को दर्शाने वाला परिदृश्य हमें हासिल होता है, वो लाजवाब किस्म से इस जोड़ी को शीर्षस्थ संगीतकार बनाता है। आप ऐसे दर्जनों गीतों को याद कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ कुछ गीतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने,
बातों बातों में देखा बन गए अफसाने।
बाद में नई आवाजों के लिए भी कल्याण जी आनंद जी उसी तरह एक बड़े संगीत निर्देशक की तरह सामने आए, जिस तरह आर डी बर्मन और जयदेव ने अपनी फिल्मों में कुछ मौलिक प्रयोग किए थे। इस जोड़ी के निर्देशन में कृष्णा कल्ले, कमल बारोट, उषा तिमोथी, कंचन, मनहर, नाजिया हसन, साधना सरगम और सपना मुखर्जी जैसे कलाकारों को पार्श्व गायन का मौका मिला और साथ ही अपार शोहरत भी।
आप जैसा कोई भी जिंदगी में आए तो बात पर
इतने विविधता भरी इस कलाकार जोड़ी की सांगीतिक यात्रा से विदा लेते हुए हम आपको उनकी एक सिग्नेचर धुन सुना रहे हैं, जो बाद के दशक में भी उतनी ही लोकप्रिय और कालजयी मानी गई जितनी कि वह अपने बनने के वर्षों में उत्कृष्टता के मानक पर सफल रही थी।
मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन।
यतीन्द्र मिश्र के साथ संग संग गुनगुनाने के बाद आइए चलते हैं संग संग खेल के मैदान में आदेश कुमार गुप्त के साथ।
जी संदीप, वैसे तो आज जो भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है उस पर नज़र रही, लेकिन क्यों ना शुरुआत समाचारों की अमेरिकी ओपन से की जाए, जहां दिलों की धड़कनों को काबू में रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज पुरुष एकल वर्ग का फाइनल, शीर्ष वरीयता हासिल स्पिन के राफेल नडाल और 28वीं वरीयता हासिल दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन के बीच खेला जाएगा। और देखना होगा कि क्या राफेल नडाल की बाजू में अभी भी वो जान है कि वो 28वीं वरीयता हासिल केविन एंडरसन को विजयी बनने से रोक सकें या फिर अपने नाम एक और खिताब हासिल करें।
हालांकि केविन एंडरसन भी दिग्गज खिलाड़ियों को हरा कर पहुंचे हैं।
जी हां, उलटफेर करने में माहिर हैं, इसलिए इस मुकाबले पर सबकी नजरें रहेंगी। जबकि इससे पहले जो महिला एकल वर्ग का फाइनल था वो गैर वरीयता हासिल अमरीका की स्लोनी स्टीफंस ने जीता। उन्होंने 15वीं वरीयता हासिल अपने ही हमवतन मेडिसन केस को बेहद आसानी से 6-3 6-0 से हराया। आज जहां नजरें फेडरर पर रहेगी, वहीं महिला युगल वर्ग का फाइनल स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और उनकी जोड़ीदार चीन ताइपे की चान युंगजान तथा चेक गणराज्य की लूसी हडेका और उनकी जोड़ीदार कैटरीना सिनियाकोवा के बीच खेला जाएगा। आज जब स्लोन स्टीफंस ने खिताब जीता तो वो ओपन युग की 5वीं ऐसी खिलाड़ी बनी जिन्होंने बिना किसी वरीयता के कोई अहम खिताब अपने नाम किया। उधर श्रीलंका में 3 टेस्ट मैच, 5 एक दिवसीय और 1 2020 मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी अभी पूरी तरह से अपनी थकान भी नहीं मिटा सके थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम से टकराने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में 5 एक दिवसीय और 3 2020 मैच खेलेगी। इस सीरीज के पहले 3 एक दिवसीय मैचों के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान कर दिया गया। टीम में श्रीलंकाई दौरे पर शामिल शार्दुल ठाकुर को जगह नहीं मिली है। इसके अलावा इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे ऑलराउंडर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को भी आराम दिया गया है। टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे, जबकि रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और मोहम्मद शमी अन्य खिलाड़ी हैं। यानी टीम में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। उधर आज आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी हुई, जिसके अनुसार भारत के रविंद्र जडेजा टेस्ट गेंदबाजों के रैंकिंग में पहले स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि आर अश्विन तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। पिछले दिनों टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे करने वाले इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन पहले पायदान पर बने हुए हैं। बल्लेबाजों की सूची में भारत के चेतेश्वर पुजारा चौथे और कप्तान विराट कोहली छठे स्थान पर हैं, केएल राहुल 9वें और अजिंक्य रहाणे 10वें स्थान पर हैं। तो आज वैसे भारतीय टीम का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम भी भारत पहुंच चुकी है। उन्हें बड़ा झटका पिछले दिनों तब लगा था जब बांग्लादेश ने उन्हें टेस्ट मैच में हराया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीतकर किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई।
बहुत शुक्रिया, खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और इसी के साथ थोड़ी ही देर में बजने वाले हैं भारत में रात के 8, लेकिन पहले सुनेंगे मुख्य समाचार एक बार फिर और फिर लेंगे आपसे विदा।
बीबीसी समाचार। गुजराती लेखिका काजल ओझा वैद्य ने अहमदाबाद पुलिस के साइबर सेल में शिकायत की है कि एक अनाम यूजर ने फेसबुक पर उनके साथ गाली गलौज की है और उन्हें बदनाम कर रहा है। चक्रवाती तूफान इरमा अमेरिका पहुंच गया है। फ्लोरिडा के दक्षिणी द्वीपों पर तेज हवाओं का दौर जारी है। अमरीका की नेशनल वेदर सर्विस के अधिकारी ने कहा कि हालात बेहद खतरनाक हैं। दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि उनका देश अपने यहाँ अमरीकी परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार नहीं कर रहा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे आदर्श राठौर। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया भूमिका राय ने। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे। शुभ रात्रि।